नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एनालिसिस से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है कैसे है हमारे स्कूल सरकारी स्कूलों की बदहाली किससे छिपी हुई है। इसी कारण देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था प्राइवेटकरण से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी तरीके से बाजारवाद पर जकड़ी हुई है। उच्च शिक्षा हो या मध्य वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अपनी भविष्य का निर्माण करते हैं। नेताओं और नौकरशाह की बात करें तो वह अधिकांश विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के बच्चों को सुविधा संपन्न प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए हैं, जो कि इसी विषय पर अपनी बात रखेंगे। सर, मोबाइल आने पर स्वागत सर आपका।
जी जी सर, एक ऐसा विषय जो आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ है और बच्चों के भविष्य एक अच्छे नागरिकों के निर्माण से जुड़ा हुआ विषय है शिक्षा का, तो आपने इस विषय को उठा के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य एजेंडा बनाने का आधार बना दिया है। जी सर।
सर कैसे देखते हैं हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में स्कूल?
हाँ देखिए, मतलब जो शहरी क्षेत्र है मतलब भी जैसे पांडोना की बात करें या सौंसर की बात करें या छिंदवाड़ा के क्षेत्र की बात करें, अपने मध्य प्रदेश की बात करें, तो जो शहरी क्षेत्र है जहाँ अधिकारियों का मॉनिटरिंग है वहाँ तो अच्छी व्यवस्था है, वहाँ बिल्डिंग भी ठीक ठाक है, टीचर समय पे आ जाता है, नहीं आने पे उनका कार्रवाई होता है। लेकिन समस्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की, जहाँ पे टीचर समय पे नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ बिल्डिंगों की स्थिति ठीक नहीं है और जिस तरह की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए वो संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ दो धड़े बन जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का। तो शहरी क्षेत्र तो ठीक है, अभी देखिए पांडोना की बात करें, कल सीएम राइज स्कूल में कलेक्टर साहब श्रीमान अजय देव शर्मा जी ने औचक निरीक्षण करके बच्चों से कुछ सवाल पूछे, गणित को लेकर सवाल पूछे, उनको प्रोत्साहन किया। तो ये जो पद्धति है औचक निरीक्षण वाली, क्योंकि मैं अपने इंटरव्यू में पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो अधिकारी होता है उसको बिना किसी अधिकारियों के साथ अचानक किसी स्कूल का निरीक्षण करना चाहिए, जैसे कल पांडोना में हुआ और भी ज्यादा होता है। हमारे संसद क्षेत्र में क्या होता है, जैसे एसडीएम महोदय या जिला शिक्षा का अधिकारी जाते तो वो पूरा एक अमला लेके चलते, तो उसमें क्या हो जाता है कि सामान जहाँ स्कूल में जाना है वो सावधान हो जाते। औचक निरीक्षण में प्रत्यक्ष रूप से बहुत अच्छा तरीका है ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार का, और मुझे लगता है कि श्रीमान अजय देव शर्मा जी ने जो कल सीएम राइज पांडोना स्कूल में किया, ये सब जगह होना चाहिए, इससे पूरी व्यवस्था सुधर जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहां के कलेक्टर की लड़की खुद सरकारी स्कूल में पढ़ती, तो आप देखिए फिर जब कलेक्टर महोदय डेली अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाएंगे तो वहां की कैसी व्यवस्था हो सकती। तो ये एक अच्छा तरीका है। और दूसरा चीज है कि जितने अधिकारी है उनको भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने की व्यवस्था की जाए तो अपने आप सारी व्यवस्था सुधर जाएगी।
जी सर, आपके क्षेत्र में जिन बच्चों को स्कूलों में शिक्षा मिल पा रही है क्या उससे उनके माता पिता संतुष्ट है?
देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम माता पिता का भी है, मैं भी एक अभिभावक हूँ, तो जो शिक्षक पालक संघ की जब मीटिंग होती है या जो मतलब व्यवस्था की, तो हमारे अंदर एक वो समझ नहीं है कि अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करना चाहिए, अपने उनके टीचर से मिलना चाहिए, बच्चों की व्यवस्था का अवलोकन करना चाहिए, ये चीज नहीं है। ये थोड़ी एक अवेयरनेस है, इसका रीजन है हमारी अपनी जागृति और बहुत सारे अभिभावक ऐसे जो शिक्षित नहीं है, निरक्षर है, तो उनको ये सब चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कई टीचर बहुत अच्छे भी है, मैंने देखा है कि वो बड़े ईमानदारी से अपना काम करते, और मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ऐसे टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। बहुत सारे टीचर मैंने देखा अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते, बहुत ईमानदारी से काम करते, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर है जो जिनका एक एक डेढ़ डेढ़ लाख पेमेंट है वो पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते। मैं कहता हूँ कि इनकी उम्र घटा के सीधा 50-45 में इनको रिटायरमेंट कर दो, क्योंकि इनका शरीर भारी हो गया तो ये पढ़ा नहीं सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग अच्छे टीचर है उनको बढ़ाना चाहिए और एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो टीचर स्कूल में पढ़ाता है, क्लास में पढ़ाता है, तो बाकी टीचर लोग को बड़ी दिक्कत होती है, अरे बैठो तुम क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा। ये जो गलत मानसिकता है ना शिक्षकों के बीच में, वो शिक्षक होकर इस तरह से काम करते तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। और ये प्रत्यक्ष रूप से देखने में आया कि जो टीचर पढ़ाने जाता है बढ़िया, उसको बच्चे प्रोत्साहित करते हैं, टीचर को बुलाने आते हैं और सर चलिए पढ़ाई है, तो मतलब ये एक अच्छा माहौल है। अभी मैं कई स्कूलों में देखा कि कई बच्चे खेत में यदि जाते हैं तो वो अच्छे टीचर के गुण, अच्छे पढ़ाई की वजह से वो बच्चा खेत से अपनी मम्मी को कहता है कि नहीं मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो बोले पहले तो ऐसा नहीं जाता था, नहीं बोले अब हमारे गांव में बहुत अच्छे टीचर आ गए, बहुत अच्छा पढ़ाते, सरकारी स्कूल की बात करो सर। तो ये
जी
परिवर्तन है, यदि टीचर शिद्दत से ईमानदारी से अपना काम करें ना साहब, तो प्राय सरकारी स्कूल बहुत अच्छी, और सरकारी स्कूल ही बहुत अच्छे, क्योंकि उसमें गुणवत्तापूर्ण टीचर होते, परीक्षाओं को पास करके आते, उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती, उनका मैथ बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा टैलेंट रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था हो तो थोड़ा सा बढ़िया हो सकता है।
सर, आपने सर स्कूल की अभी बात कर रहे हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की दयनीय स्थिति, चाहे खंडर होते, बिल्डिंगें हो या फिर अन्य चीजें जो है इस शासकीय स्कूलों में देखने को मिलती है। तो कई जगहों पर इस तरीके से शिक्षकों की कमी भी देखी जा रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी? कहीं
नहीं,
पुराने हमारे कार्यकाल में पेड़ों के नीचे बैठकर भी शिक्षा मिलती थी, पर सर अभी
देखिए
भी
मैंने
कईयों पद।
जी
जी सर
जी मैं कह रहा था ना कि गांवों में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात है हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, मतलब जहां पे आपको जोर करना चाहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो केवल लोक लुभावन नारे, लोक लुभावन व्यवस्थाओं के तहत अपने मतदाताओं को पक्के कर रहे, लेकिन शिक्षा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं। और मैं तो खुली चुनौती देना चाहूंगा इस लोकतंत्र में, अभी जो आगामी विधानसभा है, कि जो स्थानीय नेतृत्व अपनी शिक्षा में मुख्य एजेंडा यदि शिक्षा को बनाता है तो उसी को वोट देना चाहिए। क्योंकि आप
जी
देखिए संसद 140 साल पुरानी तहसील है, यहाँ कई नेता, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं आया, यहाँ एकलव्य विद्यालय नहीं है, और ना ही नवोदय की स्थापना होगी। फिर आप किस
और
तरह से, तो मतलब मेन चीज है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, और राजनीतिक इच्छा शक्ति शिक्षा को बढ़ावा दे तो अपने आप व्यवस्था सुधारी। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ 5-स्टार होटलों की तरह शिक्षण व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ अब बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये चाहती नहीं ना कि गरीब का बच्चा पढ़े, क्योंकि यदि गरीब का बच्चा पढ़ा तो इनकी इनकी झंडिया कौन ऊपर उठाएगा, इनके लिए कार्यकर्ता कौन बनेगा? क्योंकि जिसने आप एक बार यदि संविधान पढ़ लिया ना साहब, ये खुद मालक बन जाता है मतदाता, और फिर ये जितने लोक सेवक है ना, इनके लिए चुनौती बन जाता है वो संविधान पढ़ा वाला बालक। तो ये चाहती नहीं साहब, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है बस।
जी सर, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन का जो कल्चर है वो चल रहा है और बड़े बड़े उद्योगपतियों के या फिर आप कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों के बेटे इन प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। एक गरीब बच्चा, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, इनके कंपटीशन में कहाँ खड़ा देखते हैं सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में?
नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी बड़े आईएएस अफसर बन रहे हैं, अधिकतर आपको सत्य बता दूं कि वो गवर्नमेंट स्कूल के थे।
जी सर,
दूसरी चीज कि बात टैलेंट की है, और टैलेंट के लिए गांव और शहर मायने नहीं रखता।
जी
तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, यदि कोई बच्चा गांव में पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता। हम लोग उस श्रेणी में है कि साहब गांव से निकल के राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को पास किया है, बस हमको अपने लक्ष्य को पहचानना होता है, अपनी क्षमता को पहचानना होता है। चुनौतियां भले ही आए लेकिन आप अपने लक्ष्य को पा जाओगे। बात गाँव और शहर की नहीं है। और रही बात प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल की, तो मैंने कहा ना टैलेंट टैलेंट होता है, वो किसी सरकारी स्किल का मोहताज नहीं होता, ना ही प्राइवेट स्कूल का। आप देखिए कई ऐसे गांव की लड़कियां लड़के हैं इतना अच्छा फतह हासिल कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर साबित कर दिया कि हम जहां से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। जी
सर, मध्य प्रदेश में अभी हालिया विधानसभा चुनाव है और सर कई शिक्षकों के पद आज भी खाली है। सर, कितनी प्रभावित हो रही है शिक्षा?
नहीं, इससे प्रभावित तो हो रही है अभी भी। देखिए अतिथि शिक्षकों के माध्यम से सारी शिक्षा व्यवस्था, बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था का संचालन हो रहा है, और इसमें इसमें मैं शासन को थोड़ा सा मतलब वो करना चाहूंगा, कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा कि 2017 के बाद से ठीक से नियमित रूप से सरकारी सेवाओं में भर्ती नहीं की गई, और आप इकट्ठा भर्ती करवा रहे। अभी देखिए वर्ग 2 का मामला अभी भी लटका हुआ है, परीक्षा हो चुकी है, सेकेंड स्टेप की परीक्षा अभी तक हुई नहीं है, और ऐसी स्थिति में जो हजारों लाखों की संख्या में बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति और ये अपने केवल हित को देखते हैं, ये अपने हित को देख के निर्णय लेते हैं ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। अभी देखिए जितने भी कोई कह रहा है कि 400 में सिलेंडर देंगे, कोई बोलता है हम 1,500 देंगे, कोई बोलता है इतनी शिक्षा फ्री देंगे, उतने, ये सारी बातें हो रही है, ये इनके वचन है, लेकिन इन वचनों का कितना क्रियान होगा वो तो रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, शिक्षकों की कमी है और जो अतिथि शिक्षक है, मैं तो कहता हूँ कि जो विद्वत्तापूर्ण तरीके से अतिथि शिक्षक बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं उनको नियमित किया जाए, उनको सेवाओं का अवसर दिया जाए, और जो भी गवर्नमेंट टीचर है जो लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि साहब यहाँ निर्माण का काम होता है और निर्माण के काम में किसी तरह का कोताही बरतनी नहीं चाहिए, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। शिक्षा अधिकारी को अपनी कुर्सी से उठ के गाँव में औचक निरीक्षण करना चाहिए, सारे स्कूल एक माह के अंदर ठीक हो जाएंगे साहब।
सर मेरा अंतिम सवाल है, प्रदेश में 22 लाख से अधिक मतदाता 18 से 19 साल के हैं और हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जाएंगे, ये युवा मतदान करने जाएंगे, इनके लिए एक बार फिर से क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
मैं इनको एक संदेश दूंगा कि योग्य व्यक्ति को चुनना है, हमको किसी जाति धर्म वंश के आधार पर उम्मीदवारों का चयन नहीं करना है, योग्य सक्षम अच्छे पढ़े लिखे निर्णय मेकिंग जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जो समाज के हित की बात करता है, जो संसद की बात करता है, उसको चुनना है। और यदि हम ऐसे योग्य सक्षम, मैं तो कहता हूँ कि हमको शराब की बोतल और 500 का नोट साइड में लगा देना चाहिए और जबरदस्त लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि जबरदस्त लोगों की जब नियुक्ति होती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब लोकतंत्र मजबूत होता है तो विकास की गंगा बहती है। हमको व्यक्ति को देख के नहीं, उसकी योग्यता को देख के, हमको पार्टी को देखकर नहीं, उनकी क्षमताओं को देख के योग्य उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए। और आने वाले 22 लाख मतदाता मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी के वो लोग हैं, ये विकास की राह पर चलने वाले, इनके लिए धर्म धर्म की राजनीति और जातिवाद की राजनीति ये परे जाके विकास, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बुनियादी, ये सारी चीजें एक सक्षम व्यक्तित्व जो एक 5 साल के लिए आने वाला एक शिक्षा का अच्छा मॉडल देगा, विकास का मॉडल देगा, जो भविष्य के अच्छे टेक्नोलॉजी के लिए मॉडल देगा, उस तरह के योग्य उम्मीदवार को चयन करेंगे और ऐसा होगा और आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव की हम उम्मीद करते हैं। जी
जी, तो आज इसी ऐसे है हमारे स्कूल इस विषय पर एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर ने अपनी प्रतिक्रिया, क्षेत्र में हुए बदलाव और क्या समस्याएं, शिक्षा को बेहतर बनाने में क्या प्रयास किए जाए, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया है मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर मोबाइल वाणी का समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
मोबाइल वाणी सब पर।